नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र और सहमति निर्माण, मुक्त संवाद और विचार विमर्श की प्राचीन और अखंड संस्कृति है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 31 मार्च रविवार को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने को कहा। असम पुलिस के विशेष कार्यबल ने आईएसआईएस प्रमुख हारिस फारूकी को धुबरी से गिरफ्तार किया। हांगकांग जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पूर्व पंजीकरण परामर्श जारी। रूस बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे। और स्विट्जरलैंड के बैसल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर्स में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति है। दक्षिण कोरिया के सोल में आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति, खुली बातचीत और स्वतंत्र चर्चा भारत की पहचान रही है।
इंडिया हैज एन एंशियंट एंड अनब्रोकन कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी। इट हैज बीन द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कॉन्सेंसस बिल्डिंग, ओपन डायलॉग एंड फ्री डिस्कशन हैव रेजोनेटेड थ्रू आउट इंडियाज हिस्ट्री। दैट इज वाई माई फेलो सिटीजन्स कंसिडर इंडिया टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओवर द लास्ट डेकेड इंडिया हैज मूव फॉरवर्ड विद द मंत्र ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
श्री मोदी ने कहा कि अब से कुछ ही सप्ताह में भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि 1 अरब मतदाताओं के मतदान करने के साथ ही ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग एक बार फिर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि अपराधियों को सबक सिखाता है। नई दिल्ली में कल भारत राइजिंग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आतंकित करने वाले लोग अब कहीं नहीं हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व 21वीं सदी को भारत की सदी मानता है।
आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन, आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है।
निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। इस चरण में 19 अप्रैल को 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। एक रिपोर्ट।
पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीट, राजस्थान की 12 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीट और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 28 मार्च को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यहां नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 जून को होगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से काशी प्रिया।
पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और 8वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस चुनाव के लिए अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,12,00,000 से अधिक है, जिसमें पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता 4,90,000 से अधिक हैं। एक रिपोर्ट।
पंजाब में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 4,90,000 है। इनमें सबसे अधिक युवा मतदाता सीमावर्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर में 48,000 से कुछ अधिक हैं। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहा है और इसी कड़ी में इन मतदाताओं को बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी बुजुर्ग मतदाताओं को अपने घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में केंद्रीय पुलिस बल की लगभग 40 कंपनियां राज्य के अलग अलग जिलों में पहुंच गई हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि पुलिस बल विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहा है, जिससे निर्भय होकर लोग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकें। इस बीच निर्वाचन आयोग ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को रेलवे और हवाई अड्डों जैसी सरकारी संपत्तियों से सभी अनाधिकृत राजनीतिक पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक भेजने को कहा है। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग को कई पक्षों से शिकायत मिल रही है कि अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन देश के कई स्थानों पर अभी भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों का अनुपालन न होने की या आंशिक अनुपालन होने को गंभीरता से लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्लैन अख्तर।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पल में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को परामर्श जारी किया है कि वे रविवार 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखें। ये परामर्श सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी बैंकों को 31 मार्च को लेनदेन के लिए खुला रखने के अनुरोध के बाद आया है, जिससे प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब किताब चालू वित्त वर्ष में ही किया जा सके। असम पुलिस के विशेष कार्यबल ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस प्रमुख हारिस फारूखी को एक अन्य सहयोगियों के साथ कल धुबरी में गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर विशेष कार्यबल ने उन दोनों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे सीमा पार कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों आतंकियों को राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए के हवाले कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हांगकांग आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए आगमन पूर्व पंजीकरण PAR परामर्श जारी किया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में 14 दिनों से अधिक नहीं रहने की योजना बनाने वाले भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आगमन पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। ये पंजीकरण 6 महीने की अवधि और कई यात्राओं के लिए वैध है। PAR और पासपोर्ट का विवरण समान चाहिए। महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंध में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तेलंगाना के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव ने राज्य में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुई फसलों के नुकसान के लिए किसानों की सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन किसानों की मदद जरूर करेगी। राज्य के लगभग 10 जिलों में फसलों की हानि हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में कल बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में एक मुठभेड़ में 8 आतंकवादी मारे गए और 2 सुरक्षा बलों की भी मृत्यु हो गई। ग्वादर परिसर में भारी हथियारों से लैस लड़ाकों के जबरन घुसने की कोशिश और गोलीबारी तथा विस्फोट करने के कारण ये संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस खेलों के उद्घाटन समारोह और परेड में भाग नहीं ले सकेंगे। समिति के निदेशक जेम्स मैक्लियोड ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अपने देश के ध्वज के बिना परेड में भाग नहीं ले सकेगा क्योंकि वह व्यक्तिगत खिलाड़ी होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों के समापन समारोह में भाग लेने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले रूस और बेलारूस के खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के बिना खेलों में भाग ले सकते हैं। वहीं स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज कल रात जापान के ताकुमा ओबायुशी को हराकर पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और एक अन्य मैच में प्रियांशु रजावत ने हांगकांग के ली चेक यू को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस महीने की 23 तारीख तक गरज के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र बिहार और झारखंड में आज गरज के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह ठंडी हवाएं चली, आज आंशिक रूप से बादल घिरे रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद सरहद। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं, हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों की पहली खबर बनी है। जनसत्ता लिखता है चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने के फैसले का केंद्र ने बचाव किया। वहीं नवभारत टाइम्स ने केंद्र सरकार के इन शब्दों को प्रकाशित किया है, पैनल में जज हो तभी आजाद चुनाव आयोग, ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव की वजह से कई परीक्षाओं की तिथियां बदली, जनसत्ता की सुर्खी है। पत्र लिखता है परीक्षा के कार्यक्रमों में बदलाव से अभिभावक और अभ्यर्थी चिंतित। अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षा कवच बनेगा स्वदेशी पैराशूट, गगनयान मिशन में आत्मनिर्भर भारत का दम, टीसीएल बना रही चार पैराशूट, दैनिक जागरण की सुर्खी है। दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची कई अखबारों ने आज आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की, फिनलैंड लगातार सातवीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत 126वें स्थान पर। 600 किलो टन तक पहुंच सकता है देश का सौर कचरा, राष्ट्रीय सहारा ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है ये कचरा 720 स्विमिंग पूल को भरने के बराबर। रंग एकादशी पर मथुरा अयोध्या में होली का रंग, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है अयोध्या में नागा, मथुरा में 8 लाख भक्त, वृंदावन में फूलों से होली। कंपनियों में अब महिला कर्मियों को अवसर देने के रुझान की खबर राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है कैंपस प्लेसमेंट में अब 40% महिलाएं, 5% बढ़ी भर्तियां। अब वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जून से शुरू करेगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनर्स स्नातकोत्तर और एमबीए के छात्रों के लिए हो रही है शुरुआत, अमर उजाला की खबर है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में लोकतंत्र और सहमति निर्माण, मुक्त संवाद और विचार विमर्श की प्राचीन और अखंड संस्कृति है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 31 मार्च रविवार को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने को कहा। असम पुलिस के विशेष कार्यबल ने आईएसआईएस प्रमुख हारिस फारूकी को धुबरी से गिरफ्तार किया। हांगकांग जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पूर्व पंजीकरण परामर्श जारी। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे। और स्विट्जरलैंड के बासल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल प्री क्वार्टर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।